देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व नहीं है। गुंबद बनाया गया, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए, इतना ही नहीं हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं, अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का ऊर्जा का एक स्रोत है। ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा में और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर को ऊर्जा का सोर्स बना देती है। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे कोलाहल को खत्म करके मंदिर के वातावरण को पवित्र करती है। गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल निर्मित होता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लिंग्विस्टिक में विश्वास नहीं रखते, हम लोग फोनेटिक रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी सी है, भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट होगी, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है या कि कर्कश है या कि मेलोडिकल है या कि म्यूजिकल है, ये सब समझते हैं। भाषा समझने में बहुत मुश्किल होती है, ध्वनि को कोई भी समझ सकता है। अगर कोई बहुत अच्छी राग बजाई जा रही है तो हिरण भी स्तब्ध होकर खड़ा रह सकता है, वो नहीं जानता है कि आप कौन सी राग बजा रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि को जानता है कि ये ध्वनि मुझे एकाग्र करने के लिए जरूरी है। सारे प्रयोग ध्वनि के अपने मन को निर्मल करने को, वातावरण को भी निर्मल करने के लिए और मन को भी, मन पर लगातार होने वाली उस ध्वनि की चोट से हमारे मन पर भी निर्मलता आती है। ये इस तरह की चीजें मंदिर में रखी गई। खिड़की दरवाजे छोटे होने से ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का वातावरण बड़ा अनहाइजेनिक होगा, बड़ा अपवित्र होगा, लेकिन भीतर चूंकि ध्वनि के प्रयोग चल रहे हैं, बोलने वाला मंत्र बोल रहा है और ऊपर के गुंबद से वो मंत्र टकरा करके एक वर्तुल, एक साइकिल निर्मित हो रहा है और रिफाइनमेंट पूरे वातावरण को रिफाइन कर रहा है। जगह जगह से टकरा करके ध्वनि वापस वहीं आती है, एक सर्कल निर्मित हो जाए। हर जगह एक सर्कल निर्मित होता है, ऊपर से नीचे तक, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और वो सर्कल जो है वो रिदिम, जो ध्वनि के वलय जो है, एक के बाद एक घंटे में से निकलने वाली ध्वनि के वलय निकलते हैं और वो पूरे वातावरण को पवित्र करते चले जाते, धक्का देकर के सारे पार्टिकल्स को हटा देते हैं वो ध्वनि। ऐसे हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि भी जो है वो इस पूरे वातावरण को पवित्र करती है। और इतना ही नहीं, बाहर के कोलाहल को हम तक नहीं पहुंचने देती, हमारे भीतर उठने वाले कोलाहल को भी वो थोड़ी देर के लिए शांत कर देती। इतने बड़े प्रयोग ध्वनि के हुए हैं। अक्षर और शब्द में अंतर इतना ही है कि अक्षर लिपिबद्ध होते हैं, लेकिन जब वे हमारे कंठ तालु से टकराते हैं तब वे शब्द बन जाते हैं और फिर उनमें इतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि लिखने वालों ने लिखा है कि शब्द भी ब्रह्म है। एक बार डिस्कशन में किसी ने कहा कि कोई सामर्थ्य नहीं होती शब्द की, तो शायद किसी विवेकानंद के सभा की बात है या किसी और, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और उस सभा में किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो आप शब्द ब्रह्म और नाद की बात कर रहे हैं वो सब फर्जी है, फोकट है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि मिस्टर बहुत हो गया, चुप बैठते हैं कि नहीं या कि बाहर निकलवाऊं। इतना कहते ही साथ, और वो जो बीच में शब्द की शक्ति से इनकार कर रहे थे वो हड़बड़ा गए, वो बैठ गए चुपचाप। 5 मिनट के बाद वक्ता ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि शब्द में कोई सामर्थ्य नहीं होती, ध्वनि में कोई सामर्थ्य नहीं होती, आप तो मेरे 2-4 शब्द सुनकर के और बड़े तेज में आ गए और कसमसाते हुए बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि शब्द में कितनी सामर्थ्य है, ध्वनि में कितनी सामर्थ्य है? अगर वही शब्द आप प्यार से बोलेंगे उसकी ध्वनि अलग होगी, वही शब्द आप खट्टे मन से और कड़वे मन से बोलेंगे उसकी ध्वनि अलग होगी। और ध्वनि से समझ जाता है कोई कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन आप बोलना क्या चाह रहे हैं ये बिल्कुल अलग चीज है। ये आपकी आपकी ध्वनि पर निर्भर करता है। इतना महत्वपूर्ण है ये ध्वनि का प्रयोग, और पूरा मंदिर उसी ध्वनि के प्रयोग से भरा हुआ है।